मेरा तेरा मनवा कैसे एक होए रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होए रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होए रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होए रे।
ये संत कबीर दास जी महाराज की रूह को भरने वाली वाणी है। संत कबीर साहब को फादर ऑफ स्पिरिचुअलिटी कहा जाता है। उन्होंने जब हमारी भारत की सरजमीन को नवाजा तो उस वक्त हिंदुस्तान की हालत बड़ी नागुफ्ता बे थी। उस वक्त यहाँ दो बड़े मज़हब थे, हिंदुइज्म और इस्लाम, मगर दोनों के जो लीडर थे, जो अलमबरदार थे, वो मज़हब की असलियत को भूल चुके थे और उसकी जगह कर्म कांड रस्म रिवाज ने ले ली थी। ये हमें दुनिया की हिस्ट्री से मालूम होता है कि जब भी कोई संत महात्मा, कोई वली अल्लाह इस संसार में रहा है, वो असलियत का प्रचार करता रहा है, हकीकत की तालीम देता रहा है। मगर जब ऐसे वली अल्लाह, गॉड मेड फ्लैश, जीते जागते परमात्मा इस संसार में नहीं होते, तो उस वक्त जो हमारे मुल्ला होते हैं, पंडित होते हैं, भाई होते हैं, वो रस्म रिवाज का एक जाल बिछा देते हैं, क्योंकि उन्हें खुद तो हकीकत का पता नहीं होता। उन्होंने ना कभी अपने आप को जाना होता है, ना प्रभु को पहचाना होता है, और वो खुदनासी और खुदाशनासी या सेल्फ नॉलेज गॉड रियलाइजेशन के मतलब कुछ जानते नहीं हैं। इसलिए वो लोगों को हर वक्त बिजी रखने के लिए रस्म रिवाज का एक जाल, एक ढांचा बना के रख देते हैं, और उनके पास जो कोई आता है वो उन्हें रस्म रिवाज में डाल देते हैं। उन्हें यही बताते हैं कि आप पाठ किए जाओ, व्रत रखो, पुण्य करो, दान करो, जितने ये पिलग्रिमेजेस की प्लेसेस हैं उन पे जाओ, और उन्हें इस तरह से इन चीज़ों में उलझा देते हैं कि उन्हें ये फुर्सत ही नहीं हो कि वो इनसे कोई असलियत की बात पूछ सके या अपनी आत्मा के परमात्मा को पाने के मतलब कोई सवाल पूछ सके। तो यही हालत जब कबीर साहब आए तो उस वक्त इस संसार में थी, और उन्होंने लोगों को बड़े प्यार से समझाया। ये कबीर साहब की वाणी की विशेषता है कि जब कभी उन्हें जनसाधारण का इंसान मिल जाता था तो उससे वो बड़े प्रेम से बात करते थे, मगर जब कभी उन्हें कोई पंडित या मौलवी मिलता था तो उससे वो बड़ी सख्ती से बात किया करते थे। तो ये जो वाणी आपके सामने आ रही है, ये उन्होंने एक उस वक्त के बड़े प्रकांड पंडित थे, बहुत लर्नेड आदमी थे, जो कि अपने आप को सर्वाजीत कहलाते थे, उनसे खिताब करके कबीर साहब फरमा रहे हैं। कहते हैं कि उस वक्त एक बहुत प्रकांड पंडित थे और उन्होंने अपने वक्त के जितने भी पंडित थे उन सबको, जितनी ये वाणियों की व्याख्या है, इसमें जीत लिया था, और उन्होंने अपने आप को इसी लिहाज से सर्वाजीत कहलाना शुरू कर दिया था। तो जिस आदमी को तालीम का घमंड होता है उसका दिमाग अपनी जगह पे कायम नहीं रहता। अब उनकी माँ थी, अब माँ तो बच्चे को हमेशा अपने आधे नाम से पुकारती है, तो जब माँ उसे अपने आधे नाम से पुकारती थी तो माँ को भी कहने लगे कि माँ सारी दुनिया मुझे सर्वाजीत के नाम से पुकारते हैं और तुम मुझे सर्वाजीत क्यों नहीं कहती, मेरे अपने नाम से तुम पुकारती हो जो मेरा आधा नाम है, इसमें मेरी तोहीन है। उसकी माँ बड़ी समझदार थी, उसने कहा कि बेटा यहाँ एक परमात्मा को पहुँचे हुए फकीर हैं, उनका नाम है कबीर साहब, अगर तुम उन्हें जीत आओ तो मैं तुम्हें सर्वाजीत के नाम से पुकारना शुरू कर दूँ। फिर क्या था, इन्होंने समझा कि जब मैंने बाकी सब जो प्रकांड पंडित हैं उन्हें मैंने हरा दिया है तो कबीर साहब से भी मैं निपट लूँगा। इन्होंने अपने जितने धर्मशास्त्र थे वो सब के सब एक बड़ी गाड़ी ला दे और कबीर साहब के जहाँ उनकी कुटिया थी उसकी तरफ चल दी। वहाँ जब जो पहुँचे तो जाके कबीर साहब से बड़े अपने एंठे हुए अंदाज में कहने लगे कि मैं आपसे मुकाबला करने आया हूँ कि ये जो धर्म अर्थ हैं धर्मशास्त्र के उन्हें आप बेहतर कर सकते हैं या मैं बेहतर कर सकता हूँ। तो ये जो संत महात्मा होते हैं ये तो नम्रता के, ये तो मुजस्मे होते हैं, इंकसारी के मुजस्मे होते हैं। उन्होंने कहा जी मैं आपसे क्या मुकाबला करूँगा, आइए आप पधारिए तो सही। उन्होंने इन्हें बड़े एहतराम से बड़ी इज्जत से बैठाया और बैठा के इनकी जितनी खातर तवाज़ो थी वो सब कही। वो जब खातर तवाज़ो कर सके तो इन्होंने कहा आओ भाई हम धर्म ग्रंथ जो हैं उनकी जितनी ये टीचिंग्स हैं वो सब उनका व्याख्यान जो है उसका हम मुकाबला कर लें। तो वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहने लगे साहब मैं तो आपका मुकाबला नहीं कर सकता, आप जीते और मैं हारा। तो इन्होंने अपने दिली दिल में बहुत ये मगरूर और भी हुए कि इसने तो मेरा मुकाबला ही नहीं किया है। तो इन्होंने कहा अच्छा जी आप मुझे ये लिख दीजिए कि मैं जीता और आप हारे। उन्होंने कहा भाई आप जो खुद ही लिख लीजिए, जो आप लिखेंगे मैं उस पर दस्तखत कर दूँगा। तो सर्वाजीत जी ने एक कागज़ पर ये लिखा कि सर्वाजीत जीता और कबीर हारा, और उस कागज़ को उस पर कबीर साहब ने अपने दस्तखत कर दिए। उस कागज़ को वो जेब में डालकर बड़े मगरूर अंदाज में अपनी माँ के पास पहुँचे, वो कागज़ फेंक के उसके सामने कहा ये ले माँ मैं उनसे परवाना लिखा लाया हूँ, अब तुम मुझे सर्वाजीत के नाम से पुकारा कर। उसकी माँ ने जब वो कागज़ देखा तो उसे उसमें कुछ और ही नज़र आया। तो उसने कहा कि बेटा मेरी शायद नज़र कमज़ोर हो गई है, मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे कुछ ठीक दिखाई नहीं देता, तुम खुद ही पढ़ लो कि क्या लिखा है। जब सर्वाजीत ने वो कागज़ पढ़ा तो उसमें लिखा था कि सर्वाजीत हारा और कबीर जीता। तो ये बड़े हैरान हुए कि मैंने अपने हाथों से वो शब्द लिखे थे, इसमें रद्दोबदल कैसे हो गया है। फिर ये सोचने लगे कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई हो, कह लगे माँ कुछ गलती हो गई है, मैं उनसे जाकर मैं फिर लिखवा लाता हूँ। तो फिर ये कबीर साहब के पास पहुँचे, पर अब इनका अंदाज उतना बुरा नहीं था जितना कि पहली मरतबा था, इनमें कुछ थोड़ी सी इंकसारी थी। ये कहने लगे जी मुझसे कुछ गलती हो गई लिखने में शायद, तो आप उसे फिर लिख दीजिए। उन्होंने कहा भाई फिर भी तुम ही लिख लो। तो दोबारा इन्होंने वहाँ लिखा कि कबीर हारा और सर्वाजीत जीता, उन्होंने उस पर भी दस्तखत कर दिए। ये वो कागज़ भी परवाना अपने जेब में लेकर फिर माँ के पास आए और फिर माँ के हाथ में वो दिया और कहा ये लो माँ अब मैं ठीक लिखवा लाया हूँ। और माँ ने जब देखा तो फिर उसे कागज़ पे कुछ और दिखा हुआ दिखाई दिया, तो उसने फिर यही कहा कि बेटा मेरी आंखें तो कुछ काम ठीक नहीं करती, तुम खुद ही पढ़ लो। जब इन्होंने पढ़ा तो ये बड़े अपने आप पे नाराज़ हुए और ये कहने लगे कि मैं कैसा अहमक हूँ कि दो बार मुझ पर गलती हो गई, कह लगा माँ कुछ बात नहीं, मैं फिर उनके पास जाता हूँ। अब जब तीसरी दफा जो गए कबीर साहब के पास, तो उन्हें तो यही मंजूर था कि किसी न किसी तरह से इन्हें सबक सिखाना था और ये बताना था कि असल में रूहानियत क्या है और तुम किस गलत रास्ते पर जा रहे हो। जब संत चाहते हैं तो हमारा ऑपरेशन कर देते हैं, और जब ऑपरेशन करते हैं तो वो ये बात इंश्योर करते हैं कि हमारे जिस्म में कोई गंदा मवाद नहीं रहे। तो इसी तरह से कबीर साहब ने उनका ऑपरेशन करना शुरू कर दिया और जो उनकी असलियत थी वो उन्हें बतानी शुरू कर दी। तो ये शब्द उस वक्त कबीर साहब ने उच्चारण किया, ये है इसकी पृष्ठभूमि, इनकी बैकग्राउंड ये है। तो आप बड़े प्यार से सुनिए।
मेरा तेरा मनवा कैसे एक होए रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होए रे। मैं कहता हूँ आँखन देखी, तू कहता कागत की लेखी।
अब वो फरमा रहे हैं कि है मेरे दोस्त, मेरा और तेरा मन एक सा कैसे हो सकता है, मेरा और तेरा हर बात में इत्तेफाक कैसे हो सकता है। क्योंकि मैं तो जो कुछ कहता हूँ वो देख कर कहता हूँ, उसका तजुर्बा करके कहता हूँ, और तू जो कहता है वो जा तो पढ़ा पढ़ाया बात करता है या जो तूने सुनी है वो बात करता है। अब जो रूहानियत है, ये हमारे हुज़ूर पुनूर के मतलब फरमाया करते थे कि फीलिंग्स इमोशंस एंड इन्फ्लुएंसेस आर ऑल सब्जेक्ट टू एरर, सीइंग इज अबव ऑल। कि ये जो हम एहसास करते हैं चीज़ों का, ये सबका सब ये गलत है। असली बात यह है कि रूहानियत जो है वो अनुभव करने की चीज़ है, और संत महात्मा अमूमन तो बड़ी नम्रता से काम लेते हैं। इनसे कोई बात कीजिए तो कहते हैं भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो कुछ नहीं जानता, ये मेरा गुरु करता है। पर कभी कभी जब अपने जाहो जलाल में आते हैं तो तब अपनी हस्ती का जो कुछ थोड़ा सा क्लू, थोड़ा सा निशान हमें दे देती। जैसा कि कहा गया है कि नानक का पातशाह दिसे दहरा, और वैसे अपने आप को गुरु नानक सामने नीच कर्मा तक अपने आप को कहा, और बिहोल दे लाड। इसी तरह से कबीर साहब और सरबत जी को समझा रहे हैं, भाई देखो मेरा और तुम्हारा इत्तेफाक कैसे हो सकता है किसी बात पर। क्योंकि मैं तो जो कुछ कहता हूँ वो अपने अनुभव की बेसिस पे कहता हूँ, दाती तजुर्बे की बेसिस पे कहता हूँ, और तू जो कहता है वो पढ़ी पढ़ाई बातों के अनुसार कहता है। तो यही रूहानियत का निचोड़ है। यहाँ तक एक महात्मा ने कहा है कि जब तक ना देखूँ अपनी नैनी तब तक ना पतिजूँ कुर्सी पर। ये तो अपने तजुर्बे की बात है, अनुभव की बात है, कि अगर मेरा गुरु भी ये कहे कि तेरी रूहानी तरक्की हो गई है तो मैं उसे भी नहीं मानूंगा जब तक मैं खुद उसका जाती अनुभव नहीं करूंगा। क्योंकि हम बहुत से महात्माओं के पास जाते हैं, सो कॉल्ड महात्माओं के पास, वो कहते हैं भाई तेरी तरक्की हो रही है, तेरी रूह जो है वो ज़रा साफ हो रही है, प्योरीफाई हो रही है, मगर उसका हमें पता नहीं चलता। तो रूहानियत का मार्ग तो तजुर्बे का मार्ग है। तो यही कह रहे हैं कि भाई मैं जो कुछ भी कहता हूँ मैं तो रब्बी वाणी कहता हूँ, क्योंकि मैं अनुभव करके उसे कहता हूँ। और वैसे भी कबीर का जो शब्द है इसके मैंने हैं बड़ा, और कबीर साहब इतने ही बड़े थे जितना कि परमात्मा खुद बड़ा है। तो वो चूँकि प्रभु रूप थे क्योंकि जब इस संसार में घोर काल का जाल बिछ जाता है तो प्रभु खुद किसी न किसी चोले में आकर हमारी आत्माओं को प्रभु के साथ मिलाता है। तो कबीर साहब में भी प्रभु खुद काम कर रहा था। तो वो अब ये बताते हैं कि भाई मैं तो जो कुछ कहता हूँ वो सच्चाई कहता हूँ। जो रूहानियत का निचोड़ है, जो लुब्बे लबाब है, जो क्विंटेशंस है, उसे पेश करता हूँ। और जो कहता हूँ वो 100% सच होता है, मगर तुम तो सुनी सुनाई बातों पे बात करते हो, जो तुमने पढ़ा है उस पे बात करते हो। और सुनीदा क्या बहुत मानिंद दीदा, कि जो सुनी हुई बात है या पढ़ी पढ़ाई बात है वो देखी हुई बात के बराबर कैसे हो सकती है। इस सिलसिले में हमारे अधूरे पन्नू संत कृपाल सिंह जी महाराज एक मिसाल दिया करते थे कि अगर चार बाहर के मुल्कों के आदमी कश्मीर की सैर करने के लिए आएँ, वो कश्मीर को देखें और जाके हर एक अपने अपने मुल्क में अपनी अपनी भाषा में अगर इसका जिक्र लिखे कश्मीर का, तो वो उसकी जो बड़ी बड़ी बातें होंगी वो तो मिलती हूँ, मगर हो सकता है कि एक आदमी पहलगाम के मुतल्लिक चार लाइनें लिखे और दूसरा चार सफ़े लिखे, एक आदमी गुलमर्ग के मुतल्लिक 10 सफ़े लिखे, दूसरा 25 सफ़े लिखे। हो सकता है कि जो श्रीनगर के चार बाग हैं उनका कोई जिक्र करे कोई नहीं करे। तो अगर कोई पढ़ने वाला चारों किताबों को पढ़ेगा तो वो कन्फ्यूज होगा कि ये क्या बात है, इसने इस बात के मतलब इतना ज़्यादा लिखा है, इसने इसका जिक्र ही नहीं किया, इसने इसका सरसरी तौर पर जिक्र किया है, दूसरे ने बड़ा डिटेल जिक्र किया है। मगर अगर कोई आदमी कश्मीर होके आया हो और वो उसके पास चला जाए तो वो बता देता है कि भाई ये सच्चाई है, यह हकीकत है। तो इसी तरह से जब हम धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सा कन्फ्यूजन होता है। और अगर किसी हम ऐसी वली आला हस्ती के कदमों में पहुंच जाएं, तो वो जितने हमारे शक और शुबे होते हैं सारे के सारे दफ़ा कर देता है और जो हकीकत है वो हमारे सामने पेश कर देता है। इस तरह से अब ये सर्वजीत को बता रहे हैं कि देखो तुम खामखा अपने इल्म पे दौर पर इतराओ नहीं, क्योंकि सर्वजीत का जो इल्म था वो इल्म सफीना था, इल्म सीना नहीं था। वो प्राविद्या की बात कर रहा था, वो अप्राविद्या की बात नहीं कर रहा था। और कबीर साहब तो जो बात करते थे वो अप्राविद्या की करते थे, इल्म सीना की बात करते थे। तो यही समझाते हैं कि भाई देखो तू तो खुद भी गलत रास्ते पे चल रहा है, और इससे बड़ा गुनाह कबीरा ये कर रहा है कि तो दूसरों को भी गलत रास्ते पे डाल रहा है, क्योंकि तुम्हें तो हकीकत से रूशनाशी नहीं है, तुम हकीकत को नहीं समझते हो, फिर दूसरों को क्यों कर्म कांड में तुम डाल रहे हो। हाँ जी,
मैं कहता हूँ आँख न देखी, तू कहता कागत की लेखी, मैं कहता सुरझावन हारे, तू रही हो उर्जाई रे।
अब जो फरमाते हैं कि जो उलझन होती है, मेरे पास कोई आता है उसे कोई शक व शुबा होता है, उसे कोई उलझन होती है रूहानियत के रास्ते में, तो मैं उसे दूर कर देता हूँ। क्योंकि जो खुद प्रभु का अनुभव करता है वो दूसरों को भी बड़े सीधे और सादे अल्फाज में जो सच्चाई है वो बयान कर देता है। हमारे हजूर पन्नू संत कृपाल सिंह जी महाराज और मुर्शिद आज़म हजूर बाबा सामन सिंह जी महाराज, उनकी एक सबसे बड़ी एट्रीब्यूट ये थी कि वो पेचीदा से पेचीदा जो इंसानियत के और रूहानियत के मसाइल थे उन्हें बड़े सीधे सादा लफ्ज़ों में बयान कर देते थे, और आदमी दंग रह जाता था कि इतनी ये सलासत से ये इतने इतने बड़े मसाइल को पेश कर रहे हैं। और हमारे हजूर पन्नू तो ये फरमाया करते थे कि जो चीज़ सादा नहीं है वो रूहानियत नहीं है। रूहानियत बातें जितनी भी होती हैं वो सब की सीधी सादा होती हैं, और जो उन पर अमल करता है वो बड़ी सादगी से उन्हें बयान कर देता है। मगर कहते हैं कि भाई तेरे पास जो कोई आता है तुम्हें खुद तो हकीकत की इतला है नहीं, तुम खुद तो हकीकत को समझते नहीं, और दूसरों को तुम गलत रास्ते पे डाल देते हो, कर्मकांड में डाल देते हो। उन्हें कहते हो कि वो व्रत रखें, वो बख्शीश दें, वो ज़कात करें, वो जितने भी ये हमारे डेटिन हैं या परमात्मा है उन सब को कुर्बानियाँ पेश करें, वो जितनी ये हमारी ज़ियारत गाहें हैं उन सब पे जाएं, और जितने बाहर के रस्म रिवाज हैं उसी में तुम तो उलझा देते हो, तुम तो उन्हें सच्चाई की बात करते नहीं हो। और ये जितने भी अलमबरदार होते हैं, ठेकेदार होते हैं मतलब कि उन्हें चूँकि हकीकत की समझ नहीं होती, इसलिए वो अगर बात करते भी हैं तो वो लफाजे से काम लेते हैं, वर्बोसिटी से काम लेते हैं, ताकि उनके अल्फाज में लोग उलझ जाएं और जो सच्चाई है उसके मुतलक वो इंसिस्ट नहीं करें। तो कहते हैं भाई तुम्हारे पास तो जो भी आदमी आता है अगर रूहानियत के मुतलक कुछ पूछता है, आत्मा के मुतलक कुछ पूछता है, परमात्मा के मुतलक कुछ पूछता है, तो तुम उन्हें गलत रास्ते पर डाल देते हो। क्योंकि एक जो ठेकेदार होता है मज़हब का, वो तो यही कहता है कि अच्छा हुआ इस ब्लास्ट उठालो, जो आए उसे कह दो अच्छा भाई 101 पाठ करो श्री गुरु ग्रंथ साहब के, रामायण के 1001 पाठ करो, जितनी हमारी ज्यारत गाहें हैं सब पे जाओ, श्री अमरनाथ जाओ, हरिद्वार में जाओ, बाकी जगहों पे जाओ, तो कम से कम कुछ साल के लिए तो वो जो आदमी उनके पास आता है वो टल गया। और रूहानियत की तो उन्हें ना खुद खबर होती है ना बता सकते हैं। मगर जब कोई असली संत महात्मा के पास जाता है, जीते जागते खुदा के पास जाता है, तो वो कहता है भाई एवं ब्रह्म बैठो, मैं अभी तुम्हें मैं परमात्मा से मिलाता हूँ, परमात्मा का जलवा दिखाता हूँ, जो हमारे अंतर हर वक्त नगमा जारी है सारी है, जो नाम है उसका ज़ाती तजुर्बा देता हूँ, जो अंतर में प्रभु के नज़ारे हैं उनका ज़ाती तजुर्बा देता हूँ, वो हमारी जो अंदरूनी आँख उसे खोल देता है ताकि हम जो प्रभु के नज़ारे हैं वो देखने वाले बन जाएं, अंदरूनी कान खोल देता है ताकि हम शब्द के सुनने वाले बन जाएं। और असलियत तो यही है कि जिस किसी ने प्रभु को पाया है ज्योति और श्रुति के ज़रिए से पाया है, और जो पाएगा ज्योति और श्रुति के ज़रिए से पाएगा, तो जो संत महात्मा है वो तो हमारी आत्माओं को ज्योति और श्रुति से जोड़ देता है, जब हमें नामदान देता है तो जीते जी मरने की विद्या सिखा देता है, जिस्म और जिस्मानी से ऊपर आने की जो विद्या है जो सिखा देता है। क्योंकि ये जो जीते जी मरने की विद्या है असली मानों में यही हमेशा जीने की विद्या है। हम जो चाहते हैं कि हम प्रभु की अंश है प्रभु में मिल जाएं, या विदानी हो जाएं, लापानी हो जाएं, अमर हो जाएं, तो वो हमें जो चीज़ अमर है जो चीज़ महाचेतन है उससे हमारी आत्मा का मिलाप करा देती। मगर जो हमारे मुल्ला हैं पंडित हैं भाई हैं वो तो हमें रस्म रिवाज में उलझा देते हैं। तो यही बता रहे हैं कि भाई मेरे पास जो आता है जितनी भी उसकी मुश्किलात होती हैं जो इंट्रिकेसीज होती हैं मैं तो सबको हल कर देता हूँ, जो सच्चाई है उन्हें थोड़े लफ्ज़ों में मैं बयान कर देता हूँ, उनकी समझ में आ जाती है। मगर आपके पास जो भी कोई आता है आप उसे और उलझा के रख देते हैं, आप उसे कुरा कर देते हैं सही रास्ते से, डिविएशन की तरफ उसका मन आप फेर देते हैं। तो कहने लगा भाई अब तेरा और मेरा कैसे बातों में इतफाक हो सकता है, तेरा जो मन है तो मन के अधीन है और तू तो लोगों को उलझाता है, मैं प्रभु से एकमिक हो चुका हूँ, परमात्मा से एकमिक हो चुका हूँ, मुझे परमात्मा काम करता है और मेरे पास जो आता है उसे मैं परमात्मा से मिला देता हूँ।
मैं कहता सुरझावन हारे तू रहियो उरझाए रे, मैं कहता तू जागत रहियो तू रे कहता है सोई रे।
अब जो बता रहे हैं कि दुनिया में हर आदमी सोया हुआ है, कुर्बानी में भी यही आया है, क्या हमारी माँ भी सो रही है, हमारा बाप भी सो रहा है, हमारे भाई भी सो रहे हैं, हमारी बहनें भी सो रही हैं, हमारे दोस्त मित्र उस्ताद सब के सब सो रहे हैं। और ये जो पांच डाकू हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के, ये जो हमारे अंतर में अमृतसर का चश्मा है, ये जो चश्मा है कौशल है, ये जो फाउंटेन है द वाटर ऑफ लाइफ है, इससे जो अमृत बह रहा है वो पांच डाकू पी रहे हैं। और हमारी हालत ये है कि चूँकि हम सब सोए हुए हैं, खुफ्ता राखुफ्ता कह अमृत बेदार, कि सोए हुए को सोए हुआ कैसे जगा सकता है, सोए हुए को जगा तो वही सकता है कि जो खूब जागता। तो जो असली मानों में संत होता है वो तो खुद प्रभु होता है, वो तो खुद जागता होता है, वो जागता पुरुष होता है, वो हमें जगा सकता है। क्योंकि ये तो बेदारी का रास्ता है। एक मेरा शेर मैंने कहा था दूर पुनून के मुतलक कि तेरा नगमा नूर बेदारी का एक पैगाम है और ये पैगाम कुल इंसानियत का नाम है। और फिर एक और शेर में मैंने कुछ इस तरह से कहा है कि हम अपने जज्बा बेदार को रुसवा नहीं करते और शबे गम हम आँखों को आप से आलूदा नहीं किया करते, कि ये जो संत महात्मा हैं ये तो हर वक्त जागते रहते हैं, खुद जागते हैं और दूसरों को ख्वाबे खरगोश जगाते हैं। ये जो संसार है ये सब एक ख्वाब की भांति है, तो वो हमें ख्वाब से जगाते हैं और जो असलियत है जो हकीकत है उससे रूस नाश कराते हैं, उसका हमें अनुभव कराते हैं। मगर जो हमारे अलमदार हैं मतलब के, जो मुल्ला हैं, जो पंडित हैं, जो भाई हैं, वो तो हमें और सुलाते हैं, वो तो हमें यही कहते हैं भाई कर्म कांड में पड़े रहो, दसवें रिवाज में लगे रहो। वो ये तो ऐसा है कि हमें अगर नींद आई हो, सर्दी का मौसम हुआ हो, तो वो हमारे ऊपर एक दो रजियाँ और रख देती हैं ताकि हमारी जो नींद है गफलत की बहुत लंबी हो जाए, हम ख्वाब खरगोश में सो जाएं, जब कुंभकर्ण की नींद छोड़ जाएं। और जो असलियत है वो ये है कि हमारे जितने धर्म ग्रंथ हैं ये सब, वो एक अंग्रेजी में कहानी आती है स्लीपिंग ब्यूटी की, कि ये खूबसूरती है हुस्न है जो कि सोया हुआ है। जब हुस्न सोया हुआ है तो उसका जो आशिक है कभी वो दाएं जाता है कभी बाएं जाता है, वो बात करना चाहता है मगर उसने तो सो रहा है वो उससे बात नहीं करता। इसी तरह से जितने हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं ये सोए हुस्न की मानिंद हैं, हम उन्हें पढ़ते हैं, जो असलियत है उनकी हमें समझ नहीं आती, हम समझना चाहते हैं, एक ग्रंथ के बाद दूसरा पढ़ते हैं, दूसरे के बाद तीसरा पढ़ते हैं, मगर उनकी कोई समझ नहीं आती। मगर अगर कोई आके अपने मैजिक टच से ये जो स्लीपिंग ब्यूटी है इसे जागृत कर दे तो फिर उठ के हमसे वो बात भी करती है, हमारे हर सवाल का जवाब भी देती है। इसी तरह से जितने धर्म ग्रंथ हैं ये तो सोई हुई ब्यूटी की मानंद हैं। अगर कोई जिंदा संत महात्मा जो है जो कि जागता हुआ परमात्मा है वो हमें इनकी कुंजी दे दे, हमें नामदान बख्श दे, रूहानियत का जो सार है हमें समझा दे, जितने ये नुक्ते हैं जितने रमूज हैं रूहानियत के इन सब से हमें रूसनाश करा दे, तो फिर जो हमारे ग्रंथ हैं यही जो हमारे सहीफे हैं जो बोलने लगते हैं हमें इन सहीफों के समझ आनी शुरू हो जाती। तो यही बता रहे हैं कि भाई तू तो खुद सो रहा है और जो आता है उसे तो और सुला देता है, तुम्हें तो रूहानियत का पता है नहीं, तेरी तो बिल्कुल निग्नोरेंस है रूहानियत के मतलब। अब जो कोई आता है उसे तो रस्म रिवाज में तो फंसा देता है ताकि उन्हें कभी जो रूहानियत की जो सच्चाई है उसका कुछ निशानी नहीं मिले। मगर जो मेरे पास आता है मैं तो वो चूँकि सोया हुआ होता है, मैं खुद जागता हूँ, मैं उसे जगा देता हूँ। और अब जिसकी इंद्रियाँ जो हैं वो बाहरमुखी हुई होती हैं, उसकी इंद्रियों को मैं अंतर चालने की, अंतर्मुखी करने की उन्हें ये जो तरीका है, ये जो अभ्यास है, ये सिखा देता हूँ। नतीजा ये होता है कि हमारे दिल का प्याला जो अब बाहर की तरफ झुका हुआ है, जो उल्टा हुआ हुआ है, ये सीधा हो जाता है और हमारे अंतर में जो वाटर ऑफ लाइफ है उसके वो नीचे सीधा हो जाता है। इसलिए वो वाटर ऑफ लाइफ से, आबे हयात से, अमृत से वो भर जाता है। तो तुम्हारा और मेरे जो काम हैं ये तो डायमेट्रिकली अपोजिट हैं, एक दूसरे के बिल्कुल उल्टी तरफ हैं। इसलिए हमारा मन एक सा कैसे हो सकता है, हमारा कैसे इत्तेफाक हो सकता है। अब देखिए किस खूबसूरती से वो शक्ति से उसे बयान भी कर रहे हैं, ताजियाना भी लगा रहे हैं और उसे समझा भी रहे हैं कि भाई हकीकत ये है, जो तू करता है ये सब तू गलत कर रहा है काम। अब तो विद्या के उसे साथ साथ तालीम दे रहे हैं और जो पराविद्या है, जो इल्म में सफीना है, बता रहे हैं कि वो इस रास्ते में कारगर नहीं हो सकता, उससे रूहानियत में हमें तरक्की नहीं मिल सकती, रूहानियत में सफलता नहीं मिल सकती।
मैं कहता तो जागत रहियो, तू रहता है सोई रे। मैं कहता निर्मोही रहियो, तू जाता है मोही रे।
अब वो समझा रहे हैं कि ये जो रूहानियत का रास्ता है ये तो विराग का रास्ता है, ये तो डिटैचमेंट का रास्ता है, ये तो पॉजिटिव मिस्टिसिज्म का रास्ता है। इसमें तो हमें यही सिखाया जाता है कि हम दुनिया में रहें, जितने हमारे फर्ज हैं दुनिया में, हमारे माँ बाप कितने, हमारी सोसाइटी कितने, हमारी नेशन कितने, इसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे और फिर कॉस्मिक लेवल पे हम अपने सारे फर्ज पूरे करें। बस हम ये सब फर्ज पूरे करते हुए भी इन सब को इन स्पिरिट ऑफ डिटैचमेंट करें, इनसे हमें मोह नहीं हो, इनसे हमें अटैचमेंट नहीं हो और हम हर वक्त बाहर के फर्ज तो करते रहें लेकिन हाथ कारबल और दिल यारबल वाला हमारा मामला हो, हमारी जो लगन है हर वक्त वो प्रभु से लगी रहे। क्योंकि हमारा जो रास्ता है ये नेगेटिव मिस्टिसिज्म का रास्ता नहीं है कि हम जो हिमालय की बर्फानी चोटियां हैं वहाँ जाके हम गारों में रहें या कहीं लगोदक सैराब में हम जाके झोंपड़ियों में रहें। हमारा रास्ता तो ये है कि जैसे जल में कंवल निरालम मुर्गा ये निशाने, शुर शब्द बहुत आगर तरी नानक नाम खाने, कि जैसे कमल का फूल पानी में रहता है, उसकी जड़ें तो कीचड़ में होती हैं मगर वो निर्लेप रहता है, अनअटैच रहता है। और जैसे मुर्गा भी है पानी में रहती है मगर ये पाती है तो सूखे परोस उठ जाती है। इसी तरह हमें भी दुनिया के सब कारोबार करने हैं मगर इन स्पिरिट ऑफ डिटैचमेंट करने हैं, दुनिया से हमें किसी से मोह नहीं करना है, हमें अपना फर्ज पूरा अदा करना है। अब ये कहते हैं कि मैं तो यही हर एक को बताता हूँ कि भाई तुम अपने सारे काम करो, निर्मोही होके करो, दुनिया के कामों में उलझ नहीं जाओ। हमारे हुजूर पुन्नु फरमाया करते थे कि जो चीज़ हमें बरतनी थी वो हम भोग रहे हैं और जो भोगनी थी उसे हम बरत रहे हैं। हम तो जो दुनिया के जो झंझट हैं इनमें फंस के रह जाते हैं और अपनी सारी ज़िंदगी जो है जो दुनिया और दुनियादारी में गुजार देते हैं। अब देखिए दुनिया में हम घमंड करते हैं अपने रिश्तेदारों पे, अपने धन पे, अपनी दौलत पे, अपनी जायदाद पे। इसके बाद हमें अपने इल्म पे बड़ा फख्र होता है, भरोसा होता है, अपनी ताकत पे भरोसा होता है। लेकिन अगर हम हकीकत की नज़र से देखें तो इनमें से कोई भी चीज़ हमारा साथ देने वाली नहीं। हम देखते हैं कि जितने हमारे रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, जब तक हमारा हालात साजगार होते हैं, अच्छे होते हैं, वो हमारा दम बढ़ते हैं, हम पे कुर्बान भी होते हैं। मगर अगर हमारी बदबख्ती आ जाए, हमारे जो दिन हैं वो बुरे आ जाए, तो देखिए वो किस तरह से हमसे बिछड़ जाते हैं, हमें कैसे आंखें दिखाते हैं, आंखें वो फेर लेते हैं। और अगर कोई इनमें से खुशकिस्मती से हमारा साथ भी देता है, तो सिर्फ शब्द वो कब्रिस्तान तक साथ देता है, या हमारी जो फ्यूनरल ग्राउंड हैं वहाँ तक हमारा साथ देता है। और हमारे साथ दुनिया की कोई चीज़ नहीं जाती। इस तरह से धन दौलत है, जायदाद है, हमने जब ये पाकिस्तान का सिलसिला हुआ तो उसमें देखा है कि जो लोग करोड़पति थे ओवरनाइट, उनके पास इतने पैसे भी नहीं रहे कि वो अपने लिए रोटी खरीद सकें। यही हालत हमारे इल्म की है, इल्म सीना है जो है उससे तो हम वाकिफ़ नहीं हैं। इल्म सीना जो है इससे साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है, हम चाँद तक पहुंच चुके हैं, मार्स तक और बाकी प्लैनेट्स तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हम ये नहीं जानते कि हमारा जो पड़ोसी है वो भूखा सो रहा है या उसको किसी अपनी तकलीफ़ में करा रहा है। हम सैरों तक तो पहुंच चुके हैं, मगर अपने जो दोस्त है, जो मित्र है, जो रिश्तेदार है, जो पड़ोसी है, उसके दिल को तक हम नहीं पहुंच सके। और इसी तरह से जितनी साइंस तरक्की कर रही है उतनी हमारी तबाही के आसार ज़्यादा हमें दिखाई देते। और हमारे हुजूर नूर फरमाया करते थे, क्योंकि अगर पहले हम अपने मन पर काबू पा लेते और फिर ये जो कुदरत की ताकतें हैं इन पर अगर काबू हम पाते, तो फिर तो उन्हें हम इंसान की बहबूदी के लिए, अच्छाई के लिए, बेहतरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। मगर अब ये है कि जितनी साइंटिफिक इजादें हो रही हैं वो इंसान को तबाह और बर्बाद करने में लगी हुई। तो इसीलिए जब जो हमारी ताकत है वो भी हम देखते हैं कि आज ये किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है। एक मैंने बड़ी देर हुई जब मैं स्टूडेंट था तो एक नज़म पढ़ी थी, उसमें दो रुख दिखाए थे। एक पक्ष तो बरसरे इकतदार है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, वो एक रास्ते से गुजर रहा है, उसके रास्ते पे उस पर फूलों की वर्षा हो रही है, यहाँ भी जाता है, बड़े कीमती गालीचे और कपड़े उसके रास्ते में बिछाए जाते हैं, लोग उस पर अपनी ज़िंदगी निसार कर रहे हैं। और जब वो अपनी ताकत से उतर जाता है, दूसरी तरफ जाता है, तो लोग उसे ईंटें मार रहे हैं, लोग ऊपर से उस पर गंदगी डाल रहे हैं। तो ये जो इंसानी ताकत है ये भी हमेशा रहने वाली चीज़ नहीं है। तो इसलिए ये जितनी दुनिया की संसार की और संसारी चीज़ें हैं, ये सब की सब जो हैं ये तो फ़ानी हैं, ये तो नाश होने वाली हैं। तो वो कहते हैं इनमें से कोई चीज़ हमारा नहीं साथ जाती, और जब इंसान ये जिस्म छोड़ता है तो हंस अकेला जाई वाला मामला होता है। तो कहते हैं भाई हमारे साथ जहाँ से कोई चीज़ जाने वाली है तो एक है सतगुरु और दूसरा है नाम। तो अगर हमें साथ देना तो उन्हीं का देना चाहिए। ये दुनिया भी संसार की चीज़ें हैं, इनमें हमें उलझना नहीं चाहिए, हमें अपना फ़र्ज पूरा करना चाहिए, निर्मोह होना चाहिए, स्पिरिट ऑफ डिटैचमेंट में करना चाहिए, और हमारी लिब्ध भक्त प्रभु से लगी हुई होनी चाहिए।
मैं कहता निर्मोही रे ओ, तू जाता है मोही रे।
देखिए अब जो संत महात्मा होता है उसे जहाँ वो आश्रम भी बनाता है, मंदिर भी बनाता है, कई जगह उसे कोई लगाव नहीं होता, उसे आज कहिए वो छोड़ के बाहर चला जाए। हमारे अधूरे पुनूर एक किस्सा बता रहे थे कि किस तरह से एक फकीर एक ऐसे शहनशाह के पास आया कि जो रूहानी शहनशाह भी था, तो उनके महल में आग लग गई। वहाँ जब बैठा था वहाँ आग लग गई, वो आराम से बैठा था, मगर जो आदमी जो समझता था कि मैं डिटैच हूँ, उसके बाद एक लकड़ी थी और एक झोला था, वो लेके भागने लगा। तो उस वक्त जनक महाराज ने उसे पकड़ लिया और कहा कि भाई देखो, तुझे इस सब में झोले से और इस डंडे से इससे इतना प्रेम है कि तू इन्हें नहीं छोड़ सकता, और मेरी तो देखो सल्तनत की सल्तनत जो है वो जल रही है और मुझे इसका कोई फिक्र नहीं, क्योंकि मुझे इससे कोई लगाव नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है, और तुझे अपने झोले से जो अटैच हुआ हुआ है इसका तुझे मोह है। तो संत महात्मा जो होते हैं वो तो निर्मोही होते हैं, अब आश्रम में रहते हैं, उन्हें कहिए एक दिन में आश्रम छोड़ के उससे अलग हो जाए, तो ये बताते हैं भाई मैं तो खुद निर्मोही हूँ, जो मेरे पास है, जो मेरे पास आता है उसे भी मैं ये दिखाता हूँ कि तुम दुनिया से डिटैच हो जाओ और प्रभु से तुम्हारा जो है वो प्यार हो जाए। जो कि संत महात्मा दो ही चीज़ें बताते हैं, पहली तो ये कि हमें जो भी कोई वली अला है, जो वक्त का महात्मा है, उसके चरणों में पहुँचना चाहिए, उससे प्यार करना चाहिए, और दूसरा नाम की हमें कमाई करनी चाहिए, संत महात्मा की सोबत करनी चाहिए, उसका संग करना चाहिए। इसके अलावा ना वो खुद कुछ करते हैं ना दूसरों को करने की तलकीन करते हैं।
जुगन जुगन समझावन हारा कही ना मानत कोई रे।
कभी कभी जब संत महात्मा अपना इशारा ले जाते हैं, हमारे मुर्शिद आदम हजूर बाबा सामन सिंह जी महाराज जो फरमाया करते थे कि भाई हमें तो प्रभु से डायरेक्ट मिशन मिलता है, हम मिशन लेके संसार में आते हैं, हम लोगों को नाम से जोड़ते हैं और जिसे जिसे हम नाम देते हैं जब तक वो अपने निजगर सत्संग में नहीं पहुंच जाता है, हम अपना काम करते रहते हैं रूहानी मंडलों पे, वो जब अपना जिस्म छोड़ भी देते हैं तो उस वक्त भी वो जब उनके शिष्य की आत्मा एस्ट्रल प्लेन पे आती है तो उसका वो चार्ज खुद ले लेते हैं। यह हमारे अधूरे पुन्नू की एक चिट्ठी में बड़ी उदार से बयान किया गया है कि अगर आपका जो गुरु है वो जिस्म छोड़ जाए तो आप ध्यान तो उसी का करें, ध्यान और किसी का शिष्य ने नहीं करना, लेकिन लव द सक्सेसर नो लेस, कि जो उसका जानशीन हो उससे कम प्यार नहीं करो, क्योंकि जो भी बात जिस्मानी लेवल पे उसने समझानी है, हमारी चिट्ठियों को जवाब देना है, हमारे शक व शकूक दूर करने हैं, हमारे कर्म लेके उसने अपने जिस्म पे भोगने हैं, वो तो सक्सेसर ही भोगता है, वो तो वो जानशीन ही भोगता है। मगर जब ऐसे शिष्य की आत्मा कि जिसका गुरु अपना मुबारक जिस्म छोड़ चुका है वो एस्ट्रल प्लेन पे जाती है तो उसका अपना गुरु जिसने नामदान दिया है वही उसका चार्ज लेता है। इसलिए हमें हमेशा जिस सद्गुरु ने हमें नामदान दिया है हमें उसी का तसव्वुर करना है, उसी का ध्यान करना है, मगर उसका जो जानशीन है उससे भी हमने प्यार करना और अपने गुरु से कम प्यार नहीं करना। बड़ी खूबसूरती से बयान किया है। तो जब संत महात्मा यहाँ आते हैं तो हमारे मुर्शिद आजम फरमाया करते थे कि वो अपना चार्ज कंप्लीट करते हैं और जब वो कंप्लीट कर लेते हैं जिन आदमियों को वो चिताते हैं नाम देते हैं वो सबके सब अपने निजगर में पहुँच जाते हैं तो फिर उन्हें एक और मिशन पे भेज दिया जाता है और जब वो आते हैं तो अपना स्टाफ साथ लेके आते हैं। तो यही कबीर साहब भी बता रहे हैं कि मैं तो भाई जुगो जुगों में आया हूँ, और उन्होंने अपनी वाणी में कहा है कि जब वो सतयुग में आए तो उनका नाम सत सुकृत था, जब वो त्रेता में आए तो उनका नाम मनिंद्र था, जब वो द्वापर में आए तो उनका नाम करुणामय था, और कलयुग में उनका नाम कबीर था। तो यही कह रहे हैं कि भाई मैं तो जुगों जुगों में आता रहा, आपको समझाता रहा, मगर जब मैंने अपना ये जो इंसानी जिस्म है वो छोड़ दिया, उसके बाद अगर आप किसी और ऐसे सद्गुरु के चरणों में नहीं पहुँचे कि जो प्रभु रूप है तो फिर आप उलझ गए, मैं आपको समझाता रहा और आप उसके बाद उलटे रहे। हमारे मुर्शिद आजम फरमाया करते थे कि हम भूलते रहते हैं और संत सतगुरु हमें सही रास्ता दिखाने के लिए आते रहते हैं। हाँ जी,
जुगन जुगन समझावन हारा कही ना मानत कोई रे।
मगर अब काल का इतना प्रभाव होता है कि जो थोड़ी सी रूहें हैं, आत्माएं हैं, जो ईयर मार्क होती हैं प्रभु के लिए वही होती हैं, बाकी तो ये संसारिक कामों में उलझ के रह जाती हैं, जरस्तों रिवाज में फंस के रह जाती हैं।
तू तो रंडी फिरे बहंडी, सब धन डारा खोए रे।
अब देखिए, चूंकि वो एक जो रूहानी नेता है उससे बात कर रहे हैं, बड़ी शक्ति से बात कर रहे हैं। अब ये बताते हैं कि जो इश्क होता है वो तो अपने महबूब से हो सकता है, और इश्क एक दफ़ा ही हो सकता है, इश्क बार बार नहीं होता। हवस तो बार बार हो सकती है, मगर इश्क एक ही दफ़ा हो सकता है। और हमारी तो ये ट्रेडिशन यही है, सभ्यता का पहलू भी हिंदुस्तानी यही है कि औरत एक दफ़ा जिस साय में बैठ जाती है सारी उम्र उसी साय में बैठी रहती है। जो फ़कीर है वो जिस दरख्त के साय में बैठ जाता है सारी उम्र वहीं बैठा रहता है। जो शिष्य है वो अपने गुरु के चरणों में अगर पहुंच जाता है तो सारी उम्र उन्हीं के चरणों से वो लगा रहता है। कहने को मुझे तो पता है, मैं तो अपने सदगुरु के चरणों से फैजाब हुआ हूँ, मैं हर वक्त उन्हीं चरणों की उपासना करता हूँ, उन्हीं से मैं फैजाब होता रहता हूँ। और तू कभी एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, हर एक जगह जो है तेरे लिए सजदागाह है। मेरा तो निशाना एक है, मेरा तो टारगेट एक है, मेरा प्यार सिर्फ सतगुरु से। और जो पतिव्रता स्त्री होती है वो सिर्फ अपने पति का ध्यान करती है और किसी का ध्यान नहीं करती। अब ये बड़े सख्त लफ्जों में बता रहे हैं कि भाई मैं तो पतिव्रता स्त्री की तरह से अपने सतगुरु से प्यार करता हूँ, क्योंकि मेरा एक शेर है कि बुजुर्ग साकी मरा यार है ना बाशिद, और बुजुर्ग निष्कृष मराकार है ना बाशिद। कि जो मेरा साथी है, जो मेरा सतगुरु है, उसके इश्क के सिवा मुझे कोई काम नहीं है। हर वक्त मैं उससे प्यार करता हूँ, उसकी याद करता हूँ, और उसके साथ अलावा मेरा और कोई साथी भी नहीं है, संगी भी नहीं है। अगर हमेशा रहने वाला मेरा कोई साथी है, अगर खुद जो लाफानी है, जावेदानी है, अमर है, ऐसी कोई हस्ती है जिससे मेरा तल्लक है, तो वो है मेरा मुर्शिद, मेरा सतगुरु। उसके अलावा दुनिया के जितने दोस्त हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, वो तो सब खुद फना होने वाले हैं, वो मेरा साथ कैसे देंगे। तो इसी तरह कहते हैं भाई, मेरा तो जो इश्क है, मेरा तो जो प्रेम है, वो सिर्फ अपने सतगुरु से है। और तो हर जगह भागता है, कभी एक ज़ियारतगाह पे भागता है, कभी दूसरी ज़ियारतगाह पे भागता है। तो यही हमें संत महात्मा समझाते हैं कि गॉड रिजाइड्स इन द टेम्पल विच ही हैज मेड हिमसेल्फ, ही डज नॉट रिजाइड इन द टेम्पल मेड विथ ह्यूमन हैंड। कि प्रभु तो उसी हरि मंदिर में रहता है जो उसने खुद बनाया है। ये जो हमारा शरीर है यही असली हरि मंदिर है, क्योंकि इसमें हमारी आत्मा भी है और परमात्मा भी है। तो ये जो इंसानी हाथों से मंदिर मस्जिदें बनाई जाती हैं, इनमें प्रभु नहीं रहता। जिस किसी को प्रभु मिला है इसी इंसानी जिस्म में मिला है, और जिसे मिलेगा इसी जिस्म में मिलेगा। और हमारे जो पंडित और मौलवी और भाई हैं वो क्या करते हैं, हमने देखे हैं कि वो बाहर की ईंटों की एक मस्जिद को या एक गुरुद्वारे को या एक मंदिर को बचाने के लिए प्रभु की बनाई हुई लाख जो मंदिर और मस्जिदें हैं उन्हें गिरा देते हैं। हमारी क्रूसेड देख लीजिए, अब भी ये देख लीजिए, ये जो बर्बरियत का दौर चल रहा है, ये जो सेवजी चल रही है, हमें वो गुरुद्वारों में, मंदिरों में और मस्जिदों में इनकी जो बरूनी साइड है उसमें उलझा कर रख देते हैं, जो असलियत है वो गायब हो जाती है। तो यही कहते हैं कि भाई बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, भाई तेरा काम तो ऐसा है, तेरी तो ज़िंदगी ऐसी है जैसी कि एक वैश्य की ज़िंदगी हो, उसे ना पति मिला है ना उसे पति का जो सुख है उसका कुछ अंदाज़ा है। वो इस बात का ख्वाब भी नहीं ले सकती कि मेरा भाई सदा सुहागन बन पाया अवनासी। अब जो सुहाग है उसका रस उसने कभी पाया नहीं, और उसकी ज़िंदगी यही है कि कभी एक जगह अपने सर को झुका दो, कभी दूसरी जगह अपने सर को झुका दो। और यही बात कहते हैं संत महात्मा कि जो हर सजदागाह पे झुक जाए उसे सर नहीं कहते, ये सत वही है जो एक जगह अपनी सज्जागा पे झुकता है, जो प्रभु के चरणों में झुकता है, अपने सदगुरु के चरणों में झुकता है, वहीं झुका जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम अगर किसी मंदिर में जाएं, मस्जिद में जाएं, गुरुद्वारे में जाएं तो हम अपने सर को नहीं झुकाएं, नहीं। ये तो हमें जो पॉजिटिव मिस्टिसिज्म में यही सिखाती है कि हम जिस जगह भी जाएं वहीं जाके हम अपने सर को झुकाएं, मगर हम अपनी अपशिष्ट को सामने रख के झुकाएं। हमने शिष्टाचार कायम रखना है, यही पॉजिटिव मिस्टिसिज्म का रास्ता है कि हम शिष्टाचार अपना कायम रखें। आगे ऐसी जगह पर चल जाएँ तो अपने इष्ट को सामने रख के हम सजदा कर दें, हम सर को झुका दें, माथा टेक दें। मगर अगर दिल हमारा झुकता है तो वो अपने गुरु के चरणों में झुकता है। तो यही बता रहे हैं कि भाई तेरा जो ये तरीका है ज़िंदगी का, वो तो वैश्या की जैसे ज़िंदगी है वैसे ज़िंदगी है, क्योंकि तुमने स्वाक ना पाया है, ना स्वाक के रस की तुझे खबर है।
तू तो रंडे फिरे वहंडे, सब दन डारा खोए रे।
अब ये कहते हैं कि तू तो अपनी जो पूंजी लेके आया था तूने तो वो भी खो दी, क्योंकि जब गुरबानी में ये आया है कि कोई आदमी पैदा होता है तो उसे पूंजी मिलती है इतने श्वासों की। अब मकसद तो हमारी इंसानी ज़िंदगी का ये है कि हम किसी सत्स्वरूप हस्ती के कदमों में पहुँचें, उससे नाम दान लें, और ये जो पूंजी है जिससे हमने जीवन शुरू किया है इसे और बढ़ाएं, ताकि हमारी ये जो ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद है अपने आप को जानना और प्रभु को पाना, खुद शनासी और खुदा शनासी, सेल्फ नॉलेज एंड गॉड रियलाइजेशन, उसको हम पहुँच जाएँ। क्योंकि ये जो इंसानी जीवन है ये सबसे बड़ा जीवन है, और 84 लाख जिया जून में से यही वो सुनहरी मौका है कि जब हमारी आत्मा का और परमात्मा का मिलाप हो सकता है। और इंसान को इतनी फजीलत दी गई है कि सूफियों के कलाम में आया है कि जब इंसान को पैदा किया गया तो फरिश्तों को भी ये हुक्म सादर हुआ कि वो इंसान को सजदा करे, क्योंकि अगर देवी देवताओं ने और फरिश्तों ने भी प्रभु को पाना हो तो उन्हें भी इंसानी जिस्म जो है वो धारण करना पड़ता है। इसीलिए इसे अशरफ मखलूकात कहते हैं, नारायणी देर कहते हैं, रूफ ऑफ क्रिएशन कहते हैं, सरदार जूनी कहते हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा देह है वो यही है कि हम अपने आप को जाने और प्रभु को पाएं। मगर वो कैसे हो सकता है? वो तभी हो सकता है जब हम पे किसी वक्त के महात्मा की, जो जिंदा जावेद खुदा है, उसकी नज़र करम हो जाए, और उसकी अगर नज़र हो जाए तो वो हमें अपने कदमों में अपनी रेडिएशन से बुला लेता है, क्योंकि इश्क कबुल दर्दले मशूक पैदा मिश्वत, वही हमें चरणों में बुलाता है, फिर हम पे नामदान की बख्शिश करता है, जीते जी मरने की विद्या सिखाता है, हमें तारा चांद और सूरज से गुजार कर अपने अंदरूनी जो उसका दिव्य स्वरूप होता है उसके दर्शन कराता है। आहिस्ता आहिस्ता तसव्वुफ़ की दो मंजिलें हैं, पहले फनाफिल शेख होना, अपने गुरु में हम फना होते हैं, और फिर अपने साये में वो रूहानी मंदों से गुजार कर अपने सचखंड जो हमारा निज घर है वहाँ पहुँचा देता है, वो वहाँ से भी आगे जाकर आखिरी उस मंदल पर पहुँचा देता है जिसे मनामी कहते हैं, यहाँ हमारी आत्मा का प्रणोद का मिलाप हो जाता है, जिसे हम फना फुल्ला की मंजिल कहते हैं। वहाँ जाके हमें हमेशा के लिए सरशारी मस्ती मिल जाती है, 84 लाख की अर्जुन खत्म हो जाती है। तो अब यही हमारी ज़िंदगी का ध्येय है, और यही हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए।
सतगुरु धारा निर्मल बहे, वामे तन मन धोए रे, तू तो रंडे फिरे बहन सब दन डारा खोए रे।
अब ये कहते हैं कि तू तो जो पूंजी लेके आया था तूने तो वो पूंजी भी खो दी। अब गुरबाणी में आया है कि हम इस संसार में व्यापार करने के लिए आए हैं, वखर व्यापार जियो के, और हमने क्या बिजनेस करना है? यही करना है कि अपने आप को जानना है और प्रभु को पाना है। मगर तूने तो इससे फ़ायदा क्या उठाना था, तू तो जो अपनी पूंजी लेके आया है वो पूंजी भी तू तो अपनी दया कर देता है, जो दौलत लेके आया है उसे भी तू बर्बाद कर देता है, और नतीजा ये होता है कि फिर 84 लाख किया जून में तुम्हें जाना पड़ता है, और क्या मालूम कि कब हो आग पर क्या माजरा निकले, कि कब फिर हमें ये फिर जो इंसानी जन्म मिले और कब हमें फिर जो सुनहरी मौका मिले। तो यही बताते हैं कि भाई हमें चाहिए कि हमें जीवन से पूरा पूरा फायदा उठाए। हाँ जी,
सतगुरु धारा निर्मल बहे, वा में तन मन धोए रे।
और फिर जब उसे बता रहे हैं कि भाई देखो तुम्हें हकीकत की समझ तो है नहीं, और तू दूसरों लोगों को भी गुमराह करता है, तो सबको ये कहता है कि हरिद्वार जी चले जाओ, अमरनाथ जी चले जाओ, शेषनाग चले जाओ, तिरुपति मंदिर में चले जाओ, काबा शरीफ में चले जाओ, रुजगान की उनके जो दरगाहें हैं उनमें चले जाओ, गुरुद्वारों में चले जाओ, अमृतसर जी चले जाओ, वहाँ जाके स्नान करो, और स्नान करने से आपको सब पाप धुल जाएंगे। अब तुम्हें यह तो मालूम है नहीं कि हम इन जितनी भी ये ज्यारतगाहें हैं हम सबकी इज्जत करते हैं, क्योंकि यहाँ किसी ना किसी महापुरुष ने, किसी वली आला ने, किसी पैगंबर ने अपने मुबारक कदम रखे, हम उसके एहतराम करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। मगर ये जो तुम लोगों को समझाते हो कि वहाँ जो जो दरिया बह रहा है उसमें नहाने से हमारी आत्मा के पाप जो हैं वो धुल जाएंगे, तो ये तो गलत बात है। ऐसी जितनी भी हमारी तीर्थ यात्रा की जगह हैं वहाँ जाके हमारे जिस की गलादत तो दूर हो सकती है, मगर दिलों का मैल जो है वो दूर नहीं हो सकता। दिलों का मैल अगर दूर होता है तो उसके लिए सिर्फ एक घाट है, और वो घाट है गुरु का। जब हम अपने सतगुरु के पास जाते हैं, मुर्शिद के पास जाते हैं, वली अल्लाह के पास जाते हैं, तो जब हमारा उससे संबंध होता है, उससे प्यार होता है, उससे प्रेम होता है, उससे इष्ट होता है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो हमें रूहानी मंडलों में ले जाता है। और जो असली मानसरोवर है, जो असली अमृतसर है, जो असली चश्मा कौसर है, जो असली फाउंटेन ऑफ द वाटर ऑफ लाइफ है, वो तो हमारे अंदर है। और जब हम ये पिंड अंडर ब्रह्मण से पार जाते हैं तो वहाँ हमें वो अमृतसर मिलता है अंत में, क्योंकि अमृतसर का जिक्र है गुरबाणी में, और तीसरी पातशाही ने यह कहा है कि ये सिख का असल में मूल होना चाहिए को पहले वो उठ के अमृतसर में स्नान करे। मगर उस वक्त तो ये जो अमृतसर है ये नहीं था, वजूद में नहीं आया था, ये तो बाद में वजूद में आया। इसी तरह से यही बताते हैं कि गुरु का जो घाट है, असली घाट वही है, जब आप उसके चरणों में पहुँचेंगे वो आपको जिस्मानी से ऊपर ले आएगा, वो आपको फिजिकल एस्ट्रल काजल तीनों प्लेन से ऊपर ले जाएगा, पिंड अंडर विमन से पार ले जाएगा, वहाँ चश्मा कौसर है, वहाँ असली मानसरोवर है, असली अमृतसर है, वहाँ पे जाके आपके जितने पाप हैं सब धुल जाएंगे आत्मा के। और फिर जो हमारी आत्मा है उस वक्त वो कहेगी कि सोहंग, उसे इस बात का अनुभव होगा कि भाई मैं परमात्मा की अंश हूँ, जैसा परमात्मा है महसूस में, और फिर वो बिल्कुल पूर्ण तरीके से पाक साफ होने की कोशिश करेगी और प्रभु में मिल जाएगी। तो ये कहते हैं कि भाई तुम्हें ना तो हकीकत की खुद खबर है और ना तुम हकीकत की खबर किसी दूसरे को दे सकते हो, तुम तो उन्हें गुमराह करते हो। क्यों उन्हें गुमराह करते हो भाई, उसे जो असलियत है वो बताओ। वो अगर चले भी गए ज्यारत गाँव पे तो होना तो ये चाहिए कि वहाँ जाके हमें नम्रता आनी चाहिए, मगर आपका अगर किसी ऐसे दोस्त या मित्र से जो इनकी यात्रा करके आया हो, अगर उनका आपका उनसे संबंध पड़ा है, मेरे कई दोस्त थे वो हज करके आए तो आके कहने लगे जी हमने 3 बार हज किया है, 4 बार हज किया है, कहने यार बड़ी मौज है, घर में लोग ले आते हैं सुबह जाके हमें खाने के लिए, खूब चीज़ें ले आती हैं, और वो दफ्तर में ले आते थे कि भाई आओ आप भी शेयर करो। मैंने कहा भाई किस निस्बत से आपके घर पे लाते हैं? कहने लगे जी मैंने 3 दफ़ा हज किया है। अब हमें तो ये समझनी है कि किसी यात्रा पे जाना, तीर्थ पे जाना, इस बात का एक लाइसेंस है कि हमने पिछले साल में जितने गुनाह किए हैं वो तो धुल गए और अगले साल में करके फिर एक और यात्रा करके आ जाएंगे। तो ये कहते हैं ये बात गलत है। अगर कहीं स्नान करने से हमारे दिल का महल धुल सकता है, हमारी आत्मा पाक व पाकीज़ा हो सकती है, तो वो गुरु के चरणों में पहुँच के हो सकती है, जो हमें जिस्म और जिस्मानियत से ऊपर लाता है, जो हमारे अंदर आबे हयात का सर चश्मा है, जो अमृतसर है, जो उसमें हमें स्नान कराता है, क्योंकि उसके बाद ही जाके हमारी आत्मा के मैल जितने हैं सबके सब धुल सकते।
सतगुरु धारा निर्मल बहे, वामे तन मन धोए रे, कहत कबीर सुनो भई साधो, तब ही वैसा होए रे।
फकीर में कबीर साहब सर्वजीत को समझाते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हम प्रभु से एकमिक हो जाएं, अगर हम चाहते हैं कि हम अपने निज घर में पहुंच जाएं और जाके आखिरी मंजिल पर पहुंच जाएं जहां हम आत्मा का और परमात्मा का इत्तेसाद होता है, जब हमारी आत्मा परमात्मा में मिल जाती है, तो उसके लिए एक ही तरीका है कि हम किसी ऐसे संत सतगुरु के चरणों में पहुँचें जो खुद प्रभु रूप हो, जब हमें इस जिस्म और जिस्मानियत से ऊपर ले जाए, पहले अपने में वासल कर दे और आखिर में जाकर प्रभु से वासल कर दे। तो देखो तुम जो लोगों को गलत बात समझाते हो मत समझाओ, तुम्हें रूहानियत की दुनिया के मतलब कुछ खबर नहीं है। तुम पहले ये जो रूहानियत का रास्ता है इस पर खुद चलो, पहले अपने आप को जानो, प्रभु को पहचानो और फिर लोगों को सही रास्ते पर डालो, लोगों को गुमराह मत करो, क्योंकि तुमने ज़िंदगी में आए तक जो काम किया है वो लोगों को गुमराह करने का किया है। अब जो सतगुरु है, जो परमात्मा है, वो खुद इंसानी चोले में जब यहाँ काम करता है उस पोल से तुम पूरा फ़ायदा उठाओ और जो रूहानियत का सही रास्ता है उस पर खुद भी चलो और दूसरों को उसके बाद चलाना जब तुम खुद मंजिल मकसूद पर पहुँच गए। तो ये जो तालीम कबीर साहब सर्वजीत जी को दे रहे हैं वो हम सब के लिए है। हमें यही चाहिए कि हम यही प्रार्थना करें कि हम किसी पूर्ण संत महात्मा के चरणों में पहुँच जाएँ। और यहाँ जितने भी मेरे बहन भाई बैठे हैं वो बहुत खुशनसीब हैं, क्योंकि इस दौर के सबसे बड़े जो रूहानियत के अलमदार थे सरूर बाबा सामन सिंह जी महाराज और सरूर पन्नू संत कृपाल सिंह जी महाराज, हम में से बहुत से उनके नाम लेवा हैं। तो जिनको अब भी नाम मिल रहा है उन्हीं के हुक्म से मिल रहा है, उन्हीं के नाम में मिल रहा है। तो हमें ये चाहिए कि हम अपने जीवन को जैसा हमारे गुरु ने हमें हुक्म दिया है उसी तरह से बताएँ। हमारी ज़िंदगी में मिठास कूट कूट के भरी होनी चाहिए, कोई दुनिया का जख्म खुर्दा हमारे पास आ जाए तो हमारी बातों से प्रभु की याद आनी चाहिए और उसके जो जख्म हैं उस पर मरहम लगना चाहिए। हमें हर वक्त दूसरों की सेवा के लिए निर्भर होना चाहिए, हमारा जीवन अहिंसा का होना चाहिए, हमारा व्यवहार आचार किरदार जो है वो शुद्ध होना चाहिए, हमें नम्रता कूद कूद कर बधी होनी चाहिए। और हमें ये चाहिए कि हम जितना हमारे गुरु ने हुक्म दिया है उतना ही कम से कम वक्त भजन सिमरन में दें, बाकायदगी से डायरी रखें, ताकि जितनी ये हमारी त्रुटियां हैं वो सब आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाएं और जो हमारे गुरु की खूबियां हैं वो हम में आ जाएं और हम आपसे आखिरी मंजिल में पहुंच जाएं कि जा हमारी आत्मा परमात्मा से मिल जाए और ये 84 लाख जियाजुन का जो चक्र है ये हमारे लिए ख़त्म हो जाए।